लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं, ताकि हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु और उनके पवित्रतम हृदय के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा सांत्वना मिले, जिससे हम विश्व के सब लोगों के प्रति करुणावान बनना सीखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारी कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत फादर सिप्रियन खलखो के साथ हुई भेंट वार्ता के दूसरे भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया में एक पुरोहित एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन ईश्वर एवं लोगों की सेवा में समर्पित कर देता है। वह ईश्वर द्वारा चुना एवं अभिषिक्त होता है। कलीसिया में वह ईश्वर एवं लोगों के बीच मध्यस्थ का काम करता है। उससे दूसरा ख्रिस्त भी कहा जाता है, क्योंकि वह ख्रिस्त के स्थान पर पौत्र मिस्सा बलिदान अर्पित करता, पौत्र संस्कारों का अनुष्ठान करता एवं विश्वासियों को आध्यात्मिक भोजन प्राप्त करने में मदद करता है। वह ख्रिस्त के नाम पर अपने धर्माध्यक्ष की अगुवाई में स्थानीय कलीसिया की देखरेख करता है। पुरोहित केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं करते, बल्कि लोगों के आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन भी करते हैं। अंडमान के फादर सिप्रियन खलखो अपने पुरोहित्य जीवन के 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं। कलीसिया में विभिन्न चुनौतियों एवं पूर्वग्रहों के बीच उनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे कलीसिया की सेवा बड़ी उदारता एवं निष्ठा के साथ कर रहे हैं। फादर सिप्रियन ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बदौलत उनकी दाग पारी में वे 25 वर्षों तक काम कर पाए हैं। आज अपनी रजत जयंती के अवसर पर वैटिकन की तीर्थ यात्रा का अवसर पाकर वे अत्यंत खुश हैं। इस भेंटवार्ता में वे हमें अपना अनुभव बतला रहे हैं और याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पुरोहिताय जीवन की शुरुआत कैसे की और इस मुकाम पर वे क्या सोचते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है फादर सिप्रियन खलखो के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
मैं जब अपने पुरोहिताई के 25 साल की बात करता हूँ, मैं अत्यंत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बीते 25 वर्षों में अपने अनुग्रह से भर दिया है, अपने प्रेम से भरा है, और मैंने उसकी क्षमा, उसकी दयालुता और उसके अनुग्रह को महसूस किया है और मैं उसे बांटना चाहता हूँ। हम जुबली के इस वर्ष में संत पापा फ्रांसिस के बताए अनुसार अपने आप को आशा की तीर्थ यात्री कहते हैं। हम जानते हैं कि आशा कभी व्यर्थ नहीं होती, और मैं इसी बात को अपने संपर्क में रहने वालों को बांटता हूँ कि हमारी आशा व्यर्थ नहीं होती और हमें सदैव आशावान बने रहना चाहिए।
श्रद्धेय फादर सिप्रियन, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। आपने अपने पुरोहिताय जीवन के 25 वर्ष पूरे किए हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि कलीसिया की महाजयंती के साथ साथ अपनी भी जयंती मना रहे हैं। अपने जीवन की यात्रा के इस पड़ाव पर आपको कैसा लग रहा है और आप कैसे यहाँ पहुँचे?
सिस्टर उषा जी, आपने पूछा है कि आज मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। आप जरूर इस बात को समझेंगी कि मेरा यहाँ आपके सामने इस स्टूडियो में उपस्थित होना यूरोप के और विशेषकर रोम तथा वैटिकन के पवित्र स्थलों में प्रार्थना कर पाना, ये सब ईश्वर की मुझ पर बड़ी दया, उसकी कृपा का फल है। मैं यह भी मानता हूँ कि मेरे प्रियजनों की शुभचिंता, उनकी शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं और मेरी स्वयं की प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुन लिया है। मैं प्रभु ईश्वर को और प्रार्थना में मुझसे जुड़े सभी लोगों को बहुत याद करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। धर्म प्रांत में मेरे बिशप की अनुमति मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैं इस वर्ष अपने पुरोहित अभिषेक की रजत जयंती मना रहा हूँ। आपके माध्यम से श्रोताओं को अपने अभिषेक के दिन की बात साझा करना चाहूंगा। मैंने उस दिन वेदी पर सबके देखने के लिए प्रभु येसु का यह वचन लिख दिया था, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ मानता हूँ कि अगर मैं प्रभु के प्रेम में दृढ़ रहा तो निश्चित है कि मैं अपनी कमजोरियों के बावजूद वही सोचूंगा, वही कहूंगा और वही करूंगा जो उनके नियमों के अनुकूल है, जो मेरे खुद के आत्मिक हित के लिए ही होगा। अगले दिन जब मैं घर पर धन्यवादी मिस्सा अर्पित किया, मैंने वेदी के पृष्ठभूमि में एक प्रार्थना लिख दी थी, प्रभु मुझे विनम्र बना। आज भी मेरे लिए यही एक बड़ी प्रार्थना है, प्रभु मुझे विनम्र बना। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रभु येसु हम सबसे कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैं अपने लिए और सब पुरोहितों के लिए सोचता हूँ जिनको अल्टर क्रिस्टस अर्थात एक दूसरा ख्रीस्त कहा गया है, तो मेरा स्वभाव येसु के स्वभाव से भला कैसे भिन्न हो सकता है। और इसलिए मैं अपने को विनम्र अपने जीवन में जानना चाहता हूँ, लोग पहचाने कि मैं एक विनम्र पुरोहित हूँ।
जो वैटिकन रेडियो सुनते हैं उनके लिए आप इस मंच से क्या अच्छी बात, क्या आशा भरी बात बताना चाहेंगे?
मैं सबसे पहले जितने भी श्रोतागण हैं जो वैटिकन रेडियो की हिंदी प्रसारण को सुनते हैं, उन्हें कहना चाहूंगा कि ये ख्रिस्तान रूप में या ख्रिस्तीय रूप में उन्हें सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संत पापा की आवाज और जो येशु ख्रिस्त के प्रतिनिधि हैं, जो इस दुनिया में शांति के पहले प्रचारक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते, अगर हम ख्रिस्ती रूप में वैटिकन रेडियो को नहीं सुनते तो मैं कह सकता हूँ कि एक दृष्टिकोण से हम अपने ख्रिस्तानी जीवन में असफल से हो जाते। और इसलिए मैं बहुतों को चाहता हूँ, विशेषकर मेरे शुभचिंतक जो मुझसे जुड़े रहते, उनको बहुत बार हमारे जो हिंदी प्रसारण के पॉडकास्ट होते उनको छोटा बनाकर कभी कभी निजी रूप से अपने लोगों को प्रसारित कर देता, क्योंकि मेरा अपना एक चैनल है सादरी बाइबल वचन, अगर मैं उसे यूट्यूब में डालता तो उसमें प्रसारित कर देता। और उसमें भी मेरी ये कोशिश रहती कि मैं संत पापा के इस आवाज़ को अधिक से अधिक लोगों को बांट सकूं, जो आप यहाँ बैठे हुए करती हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर हम संत पापा की आवाज़ को मानने लगेंगे तो मानो हम ख्रिस्त के विचारों को अधिक अपना सकेंगे, यही मेरा विचार है।
बहुत सुंदर है आपके विचार और आपके संदेश, तो मैं आपके संदेश के लिए धन्यवाद देते हुए आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ आपके इस बहुमूल्य समय के लिए। आप हमारे बीच में आए, अपनी खुशी, अपना प्यार, अपनी प्रार्थनाएं हमारे साथ साझा किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपनी तीर्थ यात्रा अच्छी तरह पूरी करें और वापस लौट करके अपने मिशन को भी अच्छी तरह और उतना ही दुनिया जोश के साथ में आगे बढ़ा सकें, अधिक से अधिक लोगों को प्रभु का प्यार बांट सकें।
मेरा जीवन मेरे लिए है, तेरा उपहार प्रभु,
मेरा जीवन मेरे लिए है, तेरा उपहार प्रभु।
ओ न जाने कितने करेगा,
ओ न जाने कितने करेगा,
मुझ पर तू उपकार प्रभु।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका बहु और बेटी, लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, किसी भी महिला के लिए विधवा होने के दर्द से बड़ा दर्द दुनिया में और कुछ नहीं होता, और वो भी जब वो नई नवेली शादीशुदा हो और अपने जीवन साथी के साथ लंबे समय तक जिंदगी बिताने के सपने बुन रही हो। अक्सर देखा जाता है कि किस्मत की मारी को अपने माता पिता अपने घर ले जाते हैं और उसकी मर्जी अनुसार दूसरी शादी करा देते हैं। पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जवान विधवाएं अपने ससुराल में रहकर अपने सास ससुर की सेवा में पूरी जिंदगी बिताने का निर्णय लेती हैं। यही कुछ समाज का प्रचलन और रीति रिवाज है। कुछ सास ससुर को जवान विधवा के भावी जीवन की चिंता होती है, वे उसे मना बुझाकर फिर से शादी करने के लिए राजी करा लेते हैं और नया रिश्ता ढूंढकर बेटी की तरह अपने ससुराल से विदा कर देते हैं। अपनी जवान विधवा बहू के लिए उठाया गया उनका यह कदम सचमुच सराहनीय है। आशा है आज की नाटिका उन लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने जो आज भी विधवा विवाह को कुरीति मानते हैं। आधुनिक समाज में विधवा विवाह को बढ़ावा मिलनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका बहू और बेटी।
सरिता, तुम बहू को समझाती क्यों नहीं हो? उसने अपनी क्या हालत बना रखी है? उसने अगर अपना पति खोया है तो हमने भी तो अपना बेटा खोया है। हम भी तो अपने आप को दिलासा दे देकर किसी तरह से जी रहे हैं।
अब वह भी क्या करेगी? शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही विधवा हो जाने वाली बहू अगर एकाकीपन को ही अपना सहारा बना ले तो इसमें उसका क्या दोष?
सचमुच भाग्य ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अभी उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और उसके हाथों से भाग्य रेखा मिटा दी गई।
1 साल होने को आया है, हमने तो किसी तरह अपने आप को संभाल लिया है, लेकिन स्नेहा बहू अब तक उस सदमे को नहीं सह पा रही है।
लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जिंदगी कोई इतनी छोटी भी नहीं कि 4 दिन में बीत जाएगी।
अब तकदीर के आगे किसकी चलती है? अपने मुकद्दर पर किसका बस चला?
माना सरिता कि अपने किस्मत अपने भाग्य पर किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन जिंदगी का दूसरा नाम समझौता भी तो है। जीवन में चाहे अनचाहे हमें समझौते करना ही पड़ते हैं।
आपका कहना बिल्कुल सही है, हम भी तो अब बस समझौते के सांसों पर ही रह रहे हैं।
तुमने बहू को समझाने की कभी कोई कोशिश नहीं की?
आप भी क्या बात कर रहे हैं। की है, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसे तो जैसे अब अपनी खुशियों से कोई मतलब ही नहीं।
क्या कहती है?
उसका कहना है कि किस्मत ने मेरे साथ जो कुछ किया है मुझे उस हाल पे छोड़ दो।
लगता है उसे अपनी जिंदगी से एक चिढ़ एक नफरत सी हो गई है।
हाँ, तभी तो अब वह अपने मायके जाकर रहने की भी तैयारी नहीं कर रही। उसका कहना है कि वह हमारे साथ यही जिंदगी बिताएगी। नवीन हमारी जिम्मेदारी अधूरी छोड़ गया है, अब उस जिम्मेदारी को वह पूरा करना चाहती है, उसे निभाना चाहती है।
तुमने बहू से क्या कहा था?
मैंने उससे कहा था कि वह अपने मायके चली जाए और वहीं हंसी खुशी रहे, और माँ बाप उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं।
फिर उसने क्या कहा?
यही कि दूसरी शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है, वह हमारी देखभाल करना चाहती है।
उसके विचार तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे पीछे वह अपनी जिंदगी क्यों खराब करना चाहती है? अभी भी वक्त है, वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवार सकती है।
आपका कहना बिल्कुल सही है, अगर बहू की जगह हमारी अपनी बेटी होती तो क्या हम उसका जीवन यूं ही बर्बाद होने देते?
सही बात है सरिता, बिना औलाद की विधवा का जीवन बिना माली के बगीचे की तरह होता है, जिस पर कभी कोई बाहर नहीं आती है। तुम एक बार उसे समझाने की कोशिश तो करो, और तब तक करती रहो जब तक वह इस जीवन का मूल्य समझने न लगे।
मैं तो यह सोच रही हूँ कि हम पहले उसके लिए कोई लड़का तलाश कर लेते हैं, और मैं बहू को समझाना भी जारी रखती हूँ, कभी तो उसकी समझ में आएगी, फिर उसकी हाँ होते ही हम आगे की बात पक्की कर लेंगे। आपका क्या कहना है?
तुम्हारा कहना ठीक तो है सरिता, लेकिन बहू की हाँ भी बहुत जरूरी है, उसकी हाँ के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता।
यह बात भी सही है, लेकिन हमें अपनी कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। हो सकता है हम आज नहीं तो कल अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएं।
बिल्कुल सरिता, हमें बहू की ना से हार मानकर चुप नहीं बैठना चाहिए। वक्त धीरे धीरे हर हादसे के जख्म को भर देता है, इसमें कुछ समय तो जरूर लगता है, हमें भी बहू को कुछ समय तो देना ही पड़ेगा।
मेरा भी यही मानना है, हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए।
हाँ सरिता, यही ठीक रहेगा, हमें वक्त का इंतजार करना ही होगा।
काश सरिता सभी सास ससुर तुम्हारी तरह से सोचने लगे ना, तो ये धरती तो स्वर्ग बन जाए।
हालांकि स्नेहा साल भर तक तो दूसरी शादी के लिए ना ही करती रहेगी, और अभी भी वह पूरी तरह से राजी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह मेरी बात जरूर मान लेगी।
लेकिन वो दूसरी शादी के लिए राजी क्यों नहीं है, क्या कहती है वो?
उसका कहना है कि नवीन की जिम्मेदारी वह पूरा करना चाहती है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती है वो, इसलिए वह नौकरी भी करने के लिए तैयार है, जबकि हमारा काम तो इनकी पेंशन से ही चल जाता है।
अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्नेहा बहु आर्थिक और नैतिक रूप से तुम लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती है।
लेकिन जरा सोचो तो मुक्ता, अगर हमारी बेटी होती तो क्या हम अपनी खुशियां और अपने भविष्य के सहारे के लिए क्या उसकी सुखद भविष्य की भेंट चढ़ा देते?
नहीं, बिल्कुल नहीं सरिता, कौन माँ बाप ऐसा चाहते हैं और ऐसा करते हैं।
तो फिर जल्द से जल्द कोई अच्छा सा लड़का देख डालो तुम, मुझे पूरा यकीन है कि अपनी दूसरी शादी से वह इस सदमे से जरूर बाहर निकल जाएगी।
हाँ, तुम्हारा सोचना तो सही है सरिता, जैसा तुम चाहती हो एक लड़का मेरी नजर में है तो सही। देखो मैं बात चला के देखती हूँ वहाँ, ठीक है?
उसके पहले लड़के की फोटो मुझे दे देना और स्नेहा की फोटो भी ले जाना।
और लड़के का फोटो मैं फिर लेती आऊंगी।
ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। स्नेहा बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, यह देखो उसकी फोटो, यह हर तरह से तुम्हारे लायक है।
लेकिन माँ, मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती, मैं आप लोगों का सहारा बनकर इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इस घर से दूर करना चाहती हैं?
बेटी, हम तुम्हें इस घर से और अपने से दूर करना बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम तो बस तुम्हारा भविष्य सुखद बनाना चाहते हैं, तुम हमारे सहारे की फिक्र मत करो, ईश्वर हम जैसों का सहारा होता है।
लेकिन माँ,
अब मैं... कुछ मत कहो बेटी, हम तुम्हें यूं रोज मर मर के जीता हुआ नहीं देख सकते, हमने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है।
हाँ बेटी, हमारी तुम्हें बहू के रूप में सुख देने की इच्छा तो पूरी ना हो सकी, लेकिन अब यह इच्छा हम तुम्हें बेटी के रूप में सुख देकर पूरी करना चाहते हैं। बोलो, क्या तुम हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगी? बोलो बेटी।
पापा, मैं
जीवन के फलसफे को समझने की कोशिश करो बेटी।
हम जितना सोचते हैं जिंदगी उतनी आसानी से नहीं बीतती है, संघर्ष का दूसरा नाम जिंदगी है, लेकिन संघर्ष को भी आसान बनाने की कोशिश की जा सकती है।
एक ही बात कहूंगा बेटी, हम तुम्हें बहू के रूप में ब्याह कर लाए थे, और अब इस घर से तुम्हें दुल्हन और अपनी बेटी के रूप में विदा करना चाहते हैं। बोलो बेटी, क्या हमें इस सुख से भी वंचित करना चाहती हो?
नहीं पापा, मम्मी जैसा आप कहें मुझे मंजूर है, बेटी के रूप में मुझे आप लोगों की हर बात मंजूर है।
हम तुम्हारा सुखी भविष्य चाहते हैं बेटी।
आप लोगों को पाकर तो मैं धन्य हो गई माँ।
बहू और बेटी, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे दिव्या शूलिया, मीनल भाटिया, पूजा केलकर और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।